सभी को शलोम बशम यशुआ मशियाह। मेरा नाम शासिल लुईस है और एक बार फिर से जो है वो मैं अपनी ऐसे की किताब की जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करने लगी हूँ। अगर आपने मेरे पिछले मैसेजेस जो हैं वो या ऑडियोज या वीडियोस जो हैं वो नहीं देखी नहीं सुनी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले उन्हें सुने ताकि आप जान सकें कि पूरी कहानी जो है वो क्या है और हम जो है वो किसके बारे में जो है वो स्टडी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों को जो जब बात करती हूँ तो मैं यही बात करती हूँ कि बाइबल की जो स्टडी जो है मुताला जो होता है वो हमेशा गहराई में होता है। सो मैं जो मैं आपके साथ चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी जो है वो मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ ताकि आप जो है वो तमाम बातों को जो है शुरू से आखिर तक जो है वो कनेक्ट कर सकें, देख सकें कि कैसे जो है वो सबकों से आँख में रहकर जो है वो तमाम बातों को, कलाम की बातों को जो है वो जान सकें। और पिछला जो बाब जो था, सातवां बाब, उसके आखिर में जो था हम लोगों ने ये पढ़ा था कि बादशाह ने जो था अक्सुरिस बादशाह ने हमान को जो था वो उसी सूली पर जिसको जिस पर मुर्दकी को चढ़ाया जाना था, चढ़ाए जाने का प्लान था, बादशाह ने जो था उस पर हमान को चढ़ा दिया था। और कलाम मुकद्दस में जो है वो जबूर सातवें बाब की 14 से 16 आयात में जो है शरीर इंसान के लिए जो है वो ऐसे लिखा हुआ है, देखो इसे बदी का दर्द जहर लगा है, बल्कि वो शरारत से बारदार हुआ और उससे झूठ पैदा हुआ, उसने घड़ा खोद कर उसे गहरा किया और उस खंदक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा, उसकी शरारत उल्टी उसी के सर पर आएगी, इसका जुल्म उसी की खोपड़ी पर नाजल होगा। और इम्साल 21:15 में लिखा हुआ है, इंसाफ करने में साधक की शादमानी है लेकिन बदकरदारों की हलाकत। हमान के जितने भी प्लान्स जो थे, चूंकि उसने जो धोखाबाजी से काम किया था तो खुदावंत ने अपने लोगों के साथ जो था वो इंसाफ किया और जो उसने जो जो प्लान जो था वो दूसरों के खिलाफ बनाया था वो उसमें उल्टा खुद ही जो था वो गिर पड़ा। उसने मुर्दकी के लिए सूली खड़ी की थी मगर उसी सूली पर जो था वो उसको चढ़ा दिया गया। अभी हम उन्हीं दिनों की बात ही को पढ़ रहे हैं। एस्थर का जो सातवां बाब था उसके आखिर में हमने ये पढ़ा था कि हमान को सूली पर चढ़ाया गया और आठवें बाब के पहली आयत से जो है ऐसे लिखा हुआ है, उसी दिन अक्सुरिस बादशाह ने यहूदियों के दुश्मन हमान का घर एस्थर मलका को बख्शा और मुर्दकी बादशाह के सामने आया, क्योंकि एस्थर ने बता दिया था कि उसका रिश्ता उससे क्या था, उसका उससे क्या रिश्ता था। हमने शुरू में जो था वो ये पढ़ा था कि मुर्दकी ने जो था वो एस्थर को बताया था, कहा था, तनकीद की थी कि वो जो है वो किसी को जो है ना अपनी कौम के बारे में बताए और ना ही किसी को जो है वो अपने खानदान के बारे में बताए, और एस्थर ने जो था वो वैसा ही किया था। और फिर जब मुर्दकी ने जो था वो एस्थर को ये कहा कि वो जाकर अपने लोगों की जो फरियाद जो है वो बादशाह के सामने जाकर पेश करे, तो उस वक्त भी जो था एस्थर ने जो था वो मुर्दकी की बात सुनी और उसने जो था वो वैसा ही करने की कि उसने बादशाह के सामने जो था अपनी कौम के बारे में बताया। और फिर आखिर में हमान को जब सूली पर चढ़ा दिया गया तो उसने अपने खानदान के बारे में बादशाह को बताया और बादशाह ने जो था अपनी अंगूठी जो उसने हमान से ली थी उतार कर मुर्दकी को दी, क्योंकि बादशाह को पिछली रात से जो था वो सब यही नजर आ रहा था कि मेरे साथ जो है मेरे ख्याल ख्वाहों में जो है वो मेरी मलका और उसका खानदान है। बादशाह ने जो था मुर्दकी को के इज्जत बख्शी थी मगर अब जो है वो उसने जो अख्तियार जो था वो हमान से लेकर जो अख्तियार बादशाह ने हमान को जो दिया था उसको उससे लेकर जो अंगूठी अख्तियार को जाहिर करती है, तो उसने वो अंगूठी लेकर जो है वो मुर्दकी को दे दी। और गो के बादशाह ने जो था हमान का घर आस्ते मरकब को बख्शा था, मगर उसका जो अख्तियार जो था वो उसका जो मुख्तार जो था, मालिक जो था, सॉरी, वो ऐसे ने जो था वो मुर्दगी को दे दिया। और फिर आगे हम पढ़ते हैं तीसरी आयत से, और ऐसे ने फिर बादशाह के हजूर अर्ज की और उसके कदमों पर गिरी और आंसू बहा बहा कर उसकी मिन्नत की कि हमान अजाजी की बदख्वाही और साजिश को जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी बातिल कर दे। अब देखें कि बार बार हमें जो है वो हमान अजाजी का नाम जो है वो सुनने को मिल रहा है, हालांकि काफी दफा जो है वो हमने हमान 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 पढ़ा है, मगर ये इन बातों को दिखा रहा है कि वो एस्थर जो है वो भी जानती है कि हमान जो है वो अजाजी है, यानी कि अमालीक है, और वो उसकी बदख्वाही और साजिश को जो कि उसने यहूदियों के खिलाफ की थी बातिल करवाना चाहती थी। आगे चौथी आयत में लिखा हुआ है, तब बादशाह ने एस्तर की तरफ सुनेला आसा बढ़ाया, सो एस्तर बादशाह के हजूर उठ खड़ी हुई और कहने लगी कि अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नजर में मकबूल हूँ और ये बात बादशाह को मुनासिब मालूम हो और मैं उसकी निगाह में प्यारी हूँ, तो उन फरमानों को मनसूख करने को लिखा जाए जिनको अजाजी हमदाता के बेटे हमान ने उन सब यहूदियों को हलाक करने के लिए जो बादशाह के सब सूबों में बसते हैं तजवीज किया था। हम पहले पढ़ते हैं कि एस्तर ने जो था वो बादशाह को ये कहा कि अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नजर में मकबूल हूँ और बादशाह को मुनासिब मालूम हो और मैं उसकी नगाह में प्यारी हूँ, तो इन फरमानों को मनसूख करने को लिखा जाए। एस्तर जो थी वो किसी किस्म की और बात को नहीं अभी भी कर रही, वो अभी भी जो है वो इस बात पर फोकस किए हुए है, क्यों? क्योंकि बेशक हमान को तो फांसी पे चढ़ा दिया गया था, लेकिन असल मुसीबत जो थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी, उनको असल मुसीबत को डील करना था। और वो मुसीबत क्या थी कि जो फरमान जो था वो बादशाह की तरफ से जारी हुआ था और लोगों के हाथ में जो था वो इस फरमान की जो थी वो नकल थी कि यहूदियों के खिलाफ जो है वो उठ खड़े हों और वो यहूदियों को जो है वो हलाक कर डालें। जितने भी यहूदियों के दुश्मन होंगे वो उनके पास जो था वो इस बात का अख्तियार हासिल था कि वो उनको जो है वो अभी भी हलाक करें। तो ऐसे जो है वो बेसिकली बादशाह को यही कह रही है कि मैं इस बला को जो मेरी कौम पर नाजिल होगी क्यों कर देख सकती हूँ, या कैसे मैं अपने रिश्तेदारों की हलाकत देख सकती हूँ, और कोई भी जो है वो कौन है जो कि चाहता है कि उसकी कौम पर जो है वो किसी किस्म की मुसीबत नाजिल हो या अपने रिश्तेदारों को जो है वो मरता हुआ देखे। और एक्सक्यूज मी लिखा वह, तब एक सूरज बादशाह ने एस्तर मलका और मर्द की यहूदी से कहा। तो यहाँ पर जो है वो खास यहूदी का लफ्ज जो है वो मुर्दकी के लिए इस्तेमाल हुआ है कि देख, मैंने हमान का घर आस्तर को बख्शा और उसे उन्होंने सूली पर टांग दिया। तो हमान को तो बादशाह जो है वो सूली पर टांग चुका हुआ है, लेकिन इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ चलाया। लिखा है आगे कि बादशाह ने उनसे जो था वो ये कहा, 8वीं आयत में, तुम भी बादशाह के नाम से यहूदियों को जैसे चाहते हो लिखो और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर करो, क्योंकि जो नविश्ता बादशाह के नाम से लिखा जाता है और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर की जाती है उसे कोई मनसूख नहीं कर सकता। बादशाह को अख्तियार तो था, मगर इस किस्म का जो एक जो रोल जो है हम जानते हैं कि खुदावन के बारे में हमें इल्म है कि खुदावन ने जो कह दिया हुआ है वो कह दिया हुआ है, खुदावन जो है उसको जो है वो नहीं बदलते हैं। बादशाह जो है वो एक तरह से जो है वो ये कह रहा है कि मैंने जो कह दिया हुआ है वो कह दिया हुआ है, बाकी जो है वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम जो वो कैसे आगे जो यहूदियों के साथ जो तुम जो यहूद चाहते हो कि यहूदियों को लिखना चाहते हो तुम वैसा कर सकते हो। मेरे जहन में जो था वो बार बार यही बात आ रही थी कि आखिर क्यों बादशाह जो है वो ऐसा यू नो उसने फरमान जारी किया था, अगर वो चाहता तो उसको बातल कर सकता था। और फिर यू नो सेंस बनती है कि हाँ, कि बादशाह ने फरमान तो जारी कर दिया, सो उसको जो है वो बातल करना जो है वो मुश्किल है। मगर जो ज्यादा सेंस बनती है वो ये बनती है, एक्सक्यूज मी, कि यहूदियों के जो दुश्मन जो है, बेशक हमान को जो है वो सूली पर चढ़ा दिया गया है, मगर ये कि जो यहूदियों के जो दुश्मन जो है वो तो अभी भी जिंदा है। बहुत से हमान की माने जो है, बहुत से लोग जो है वो जैसे कि मैंने पहले भी बयान किया था कि आज भी जो है यहूदियों की तादाद जो है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। क्यों? क्योंकि यहूदियों के जो दुश्मन जो है वो हमेशा से यही चाहते आए हैं कि यहूदियों को जो है वो खत्म कर दिया जाए। सो बादशाह ने जो जो तजवीज पेश की थी वो मुझे ऐसे लगता है कि वो खुदावंद ने जो था वो अपने लोगों के लिए ज्यादा बेहतर समझी थी। कि बादशाह ने खुदावंद ने ये नहीं सोचा कि नहीं कि अच्छा कभी के हुक्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ बातल हो जाए, खत्म हो जाएगा, मगर यहूदियों के दुश्मन जो है वो तो फिर भी रहेंगे। सो वो अगर अभी इस वाली चीज से नहीं, तो हो सकता है कि आगे कल को जो है वो किसी और चीज को जो है वो लेकर जो है वो यहूदियों को नेस्त नाबूद करने की सोचे। हमें लिखा हुआ मिलता है, सो उसी वक्त तीसरे महीने यानी सेवान महीने की 23वीं तारीख को बादशाह के मुंशी तलब किए गए, और जो कुछ मुर्दकी ने हिंदुस्तान से कोश तक 127 सूबों के यहूदियों और नवाबों और हाकमों और सूबों के अमीरों को हुक्म दिया, वो सब हर सूबे को उसी की हरूफ और हर काम हर कौम को उसी की जुबान और यहूदियों को उनके हरूफ और उनकी जुबान के मुताबिक लिखा गया। उसने अक्सुरस बादशाह के नाम से खत लिखे और बादशाह की अंगूठी से उन पर मोहर की और उनको सवार हरकारों के हाथ रवाना किया जो उम्दा नस्ल के तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे। मुर्दकी ने जो था वो सेवान के महीने में जो था इस बात का फैसला किया, इस बात का जो था वो कि अच्छा कि क्या किया जाए, यहूदियों का जो दुश्मन जो है उनके साथ क्या किया जा सकता है। सो उसने जो था वो उन तमाम बातों को जो था वो लिखा, और फिर आगे जो है जारी बात है कि हूबहू जो हुक्म जो है वो दूसरे जुबानों में भी लिखा जाएगा और लिखा गया। और फिर आगे जो था, चूंकि उस जमाने में जो था दूर दराज के इलाकों तक जो था वो खत को पहुंचाने में जो था वो वक्त लग जाता था, तो वक्त चाहिए था। सो तीसरा महीना शुरू हो गया वह अबरानी कैलेंडर का। और उनको जो था वो जल्दी करनी थी, और उनकी जो थी वो कोशिश जो थी वो यही थी कि अदार के महीने से पहले पहले जो है तमाम के तमाम सूबों में जो है वो इस बात के जो है खबर फैल दी जाए, ताकि यहूदी लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए जो है मुकाबले पर अड़ जाएं, क्योंकि यही जो बात जो थी वो खत में लिखी गई। पहले जो था वो ये था कि यहूदियों पर हमला किया जाए, उनको खत्म कर डाला जाए, मगर वो जो है वो आगे जो है अपनी जान बचाने के लिए जो है मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनको जो था सिर्फ और सिर्फ बादशाह के फरमान के मुताबिक जो था वो अपनी हलाकत को जो था वो फेस करना था। मगर अब जो है हुक्म जो है वो ये जारी हुआ है कि यहूदी जो है वो अपनी जान बचाने के लिए जो है वो मुकाबले पर अड़ जाए। और उस कौम और उस 11वीं आयत से पढ़ूंगी, इनमें बादशाह ने यहूदियों को जो हर शहर में थे इजाजत दी कि इकट्ठे होकर अपनी जान बचाने के लिए मुकाबले पर अड़ जाएं, और उस कौम और उस सूबे की सारी फौज को जो उन पर और उनके छोटे बच्चों और बीवियों पर हमला हावर हो हलाक और कत्ल करें और नेस्त तो नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। कुछ ऐसा ही जो था वो यहूदियों के दुश्मन जो थे वो यहूदियों के लिए चाहते थे, मगर पहले जो था यहूदी जो थे वो उनके अपना अपना अपने बचाव के लिए जो था वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हलाक होता हुआ देख सकते थे, मगर अब जो है बादशाह ने ये कहा है कि नहीं, कि आप जो है वो अपने मुकाबले के लिए जो है जो कोई आपको हलाक करने के लिए आए आप उठ खड़े हो। और मैं क्या कहना चाह रही थी कि यू नो यहूदियों के पास जो थे पहले जो था वो किसी किस्म की कुव्वत नहीं थी, किसी किस्म का अख्तियार नहीं दिया गया था कि वो जो है वो हथियारों को उठाते, मगर अब जो है वो उनको हथियारों को उठाने की इजाजत मिल गई थी। और आगे जो है वो 13वीं आयत में जो है सॉरी 12वीं आयत से पढ़ूंगी, यक्सुरस बादशाह के सब सूबों में 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को एक ही दिन में हो, कि सिर्फ उसी दिन जो है ये चीजें जो है वो की जा सके, उससे अगले दिन नहीं उससे पहले नहीं। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सुबह में किया जाए ताकि यहूदी उस दिन अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम लेने को तैयार रहें। सो वो हरकारे जो तेज रफ्तार शाही घोड़ों पर सवार थे रवाना हुए और बादशाह के हुक्म की वजह से तेज निकल चले गए और वो फरमान कसरे सोसन में दिया गया और मुर्दगी बादशाह के हजूर से आसमानी और सफेद रंग का शहाना लबास और सोने का एक बड़ा ताज और कतान और अरगवानी खलत पहने निकला और सोशन शहर ने नारा मारा और खुशी मनाई। यहूदियों को रौनक और खुशी और शादमानी और इज्जत हासिल हुई और हर सुबह और हर शहर में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और उसका फरमान पहुंचा यहूदियों को खुरमी और शादमानी और ईद और खुशी का दिन नसीब हुआ। और उस मुल्क के लोगों में से बथेरे यहूदी हो गए क्योंकि यहूदियों का खौफ उन पर छा गया था। हैरानगी की बात है कि यहूदी कौम जो कि हमेशा से ही थोड़ी रही है और अभी भी जो था वो 127 सूबों में जो था वो हमने पहले पढ़ा था कि उनके दरमियान दरमियान में परागंदा और फैली हुई थी, वो तो इकट्ठे भी नहीं थे, मगर फिर भी जो था उनका खौफ जो था वो लोगों में फैल गया क्योंकि उनको जो था इस बात का इल्म हुआ कि पहले जो था यहूदी जो थे वो उनके मुकाबला नहीं कर सकते थे, मगर अब जो है यहूदी जो है वो अपने आप का मुकाबला करने के लिए जो है वो हथियार उठा सकते हैं। और आसमानी और सफेद रंग का शहाना लबास और सोने का एक बड़ा ताज और कतानी और रकवानी खिलत पहने मुर्द की जो था वो बादशाह के हजूर से निकला था। सो अगर आप इन रंगों को देखें तो ये जो रंग जो है वो आपको जो है अगर आप मेरे साथ खुरूज की किताब का मुताला कर रहे हैं तो आपको ये जो रंगों का जो इस्तेमाल जो है वो आपको मिशकान यानी कि खैमा इज्तमा की तामीर के लिए जो है जिन रंगों का इंतखाब जो था वो खुदावन ने किया था आपको ये रंग जो है वो नजर आएंगे कि ये उन्हीं रंगों में से हैं। और चार चीजें जो है वो यहूदियों को नसीब हुई। 16वीं आयत में मेरे साथ देखें, यहूदियों को रौनक और खुशी और शादमानी और इज्जत हासिल हुई। और फिर आगे लिखा हुआ है और हर सुबह और हर शहर में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और उसका फरमान पहुंचा यहूदियों को खुरमी और शादमानी और ईद और खुशी का दिन नसीब हुआ। सो चार चीजें जो हैं वो यहूदियों को जो है वो नसीब हुई। रौनक जो है वो मुझे वो ये था कि रौनक से क्या मुराद है और रौनक से मुराद जो है वो रोशनी है कि यहूदियों को जो था वो इस दिन जो था वो खुदावंद ने जो है वो रोशनी बख्शी है। जो और जो है वो खुदाबंद का जो कलाम जो है वो हमारे लिए जो है वो नूर है, और यही रोशनी जो थी वो फिर दोबारा से जो था वो खुदावंद ने उनको बख्शी. क्यों? क्योंकि यहूदियों की जो तालीम है, रबियों की जो तालीम है, उसके मुताबिक ये था कि हमान ने जो था वो यहूदियों पर जो था वो सख्ती करना चाहिए और उन पर पाबंदी लगाना चाहिए कि वो जो है वो अपनी जो रस्म और रवाज जो है उनको जो है वो नहीं मना सकते. और हम लोगों ने जो था वो शुरू में भी पढ़ा था कि हमान जो था वो यहूदी कौम के लिए कह रहा है कि उनके जो दस्तूर जो है वो नराले हैं, हर एक से अलग है. तो वो उन तमाम बातों को जो था वो खत्म करना चाह रहा था, और खुदावन ने जो था वो इस पे जो था यहूदियों को जो था वो वकार बख्शा था, इज्जत बख्शी थी. और ईद, अगर आप अगली आयत को देखें तो उसमें जो है वो ये लिखा हुआ है कि उनको जो है वो ईद बख्शी गई. मैं फिलहाल के लिए 8वें बाब के मुताबिक जो हूँ मैं यहीं पर खत्म करती हूँ, और अगली दफा जो है वो हम 9वें और 10वें को जो है वो हम इकट्ठा देखेंगे, और वो जो है वो हमारा आखिरी इस किताब से मुतालिक जो है वो आखिरी मुताला होगा. खुदावन खुदा जो है वो आपको बहुत बरकत दें, और आपको अपने कलाम के इल्म में जो है वो इसी तरह से आगे आगे बढ़ाते जाएं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तमाम स्टडीज से जो है वो कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा. शलोम जी.